नमस्कार भारत, 17 नवंबर रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। ईरान में तेल के दामों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले, 50 साल से कम आयु की महिलाएं नहीं कर पाई प्रवेश।
जी कल सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुले और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हुआ, जैसे पिछले कई सालों से होते आ रहा है।
जानेंगे झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी से क्यों नाराज हुए राज्य के मंत्री सरयू राय।
मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं कि एक बार ऐसे सभी लोगों से साथी के तौर पर इतने दिन रहे हैं, उनसे मैं विमर्श कर लूं, विचार कर लूं, और विचार करने के बाद जो रास्ता निकलेगा रास्ते पर चला जाए।
होंगी और भी खबरें और साथ ही उर्दू और हिंदी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। ईरान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने चेतावनी दी है कि पुलिस और न्यायपालिका प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मोहम्मद जफर मोंटेजेरी ने प्रदर्शनकारियों को आतंकी करार दिया है और आम नागरिकों को इन प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें इस्लामिक सिस्टम पर भरोसा नहीं है। ईरान में पेट्रोल की खरीद की सीमा तय कर दी गई है, साथ ही उसके दामों में भी वृद्धि की गई है। चेक रिपब्लिक की पुलिस ने अनुमान लगाते हुए बताया है कि राजधानी प्राग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आंद्रेज बेबीस और न्याय मंत्री मैरी बेनेसोवा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैरी बेनेसोवा पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने निजी व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से सब्सिडी प्राप्त की। विरोध प्रदर्शन के आयोजनकर्ता मिकुलस मिनार ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी मांगों को गिनाया। हम ऐसे नेता चाहते हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हों, ऐसे नेता जो झूठ ना बोलें, चोरी ना करें और जिनके निजी हित ना हों। आंद्रेस बेबीस, हम तुमसे मांग करते हैं कि तुम मैरी बेनेसोवा का इस्तीफा लो। ये थे चेक रिपब्लिक के एक नेता मिकुलस मिनार के शब्द। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। लाखों लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया। कई जगहों पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। अधिकतर स्थानों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि एक पोलिंग बूथ पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने वोटरों को लेकर जा रही बस पर हमला किया। इस बस में अधिकतर मुस्लिम मतदाता सवार थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे और वर्तमान कैबिनेट मंत्री साजिद प्रेमदासा के बीच है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चुनाव में साजिद प्रेमदासा का समर्थन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा की ही जीत होगी और वो देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे। ये थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों से जुड़े 400 पन्नों को प्रकाशित किया है। इन दस्तावेजों से सिंजियांग प्रांत में लाखों वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखने के निर्देशों का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी के सदस्यों से कहा है कि वो चरमपंथ और अलगाववाद से लड़ने के लिए तानाशाही युक्त तरीकों का इस्तेमाल करें। चीन के अधिकारी वीगर मुसलमानों के लिए बनाए गए बंदी गृहों को ट्रेनिंग सेंटर बताते रहे हैं। बोलीविया में जारी राजनीतिक संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने बोलीविया के हालात पर चिंता जाहिर की है। बैचलेट ने कहा है कि हाल के प्रदर्शनों को रोकने के लिए बहुत अधिक सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया, जो कि खतरनाक है। शुक्रवार को कोचाबाम्बा शहर में हुए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। लेबनान के करोड़पति व्यापारी और वरिष्ठ नेता मोहम्मद सफादी ने प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाले चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। सफादी को लेबनान के कई प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब से उनकी उम्मीदवारी की बात सामने आई थी तभी से सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही थी। लेबनान में बहुत से लोगों का मानना है कि पूर्व वित्त मंत्री मोहम्मद सफादी भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा हैं। वेनेजुएला में एक बार फिर हजारों लोग निकोलस मादुरो सरकार का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। विपक्षी नेता युआन गाइडो के आह्वान के बाद लोगों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे सस्ता तेल मिलता है, लेकिन अब ईरान में भी तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की सरकार ने पेट्रोल की खरीद की एक सीमा तय कर दी है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी।
ये आवाजें ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की हैं। ईरान की सरकार ने जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की, वैसे ही ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी इस फैसले के विरोध में उतर आए। इन प्रदर्शनों में अभी तक कम से कम 2 लोगों की मारे जाने की सूचना है। ईरान की सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ उसकी राशनिंग करने की घोषणा भी की है। इसका मतलब है कि अब ईरान में लोगों को एक तय सीमा तक ही पेट्रोल मिल सकेगा। सरकार ने पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी भी कम कर दी है। ईरान में पेट्रोल के दाम 50% से अधिक बढ़ गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान सहित करमनशाह, इस्फाहान, तबरेज, कराज, शिराज और सारी शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में दर्जनों गुस्साए कार चालकों ने अपनी गाड़ियों के इंजन खुले छोड़कर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का सहारा लिया है। ईरान में लागू हुए नए नियमों के मुताबिक अब प्रति व्यक्ति 1 महीने में सिर्फ 60 लीटर पेट्रोल ही खरीदा जा सकता है। पेट्रोल की कीमत 15,000 रियाल प्रति लीटर कर दी गई है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह कीमत लगभग 9.5 रुपए प्रति लीटर बैठती है। तय सीमा से अधिक पेट्रोल खरीदने पर पेट्रोल की 2 गुनी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले ईरान में 250 लीटर तक पेट्रोल 1 महीने में खरीदा जा सकता था। सरकार का कहना है कि पेट्रोल पर सब्सिडी हटाने और उसकी सीमा तय कर देने से जो पैसे बचेंगे, इसका इस्तेमाल गरीब परिवारों की मदद के लिए किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस नई योजना से 1.8 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था इन दिनों बुरे हाल में है। अमरीका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक बड़े तेल भंडार का पता लगने की बात कही थी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
ईरान में तेल के दामों को लेकर प्रदर्शन। रुक करते हैं भारत का। केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट कल खुल गए, लेकिन हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद पहले की तरह ही बना रहा। श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन किसी युवा महिला ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। 50 साल से कम आयु की कुछ महिलाओं को पुलिस ने वापस भी भेजा है। कपाट खुलने के बाद कल पहला दिन कैसा रहा, इस बारे में बता रहे हैं केरल से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी।
जी, कल सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुले और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हुआ, जैसे पिछले कई सालों से होते आ रहा है। मगर हजारों की तादाद में न सिर्फ केरला से बल्कि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों से भी स्वामी अयप्पा के भक्तों ने मंडला मकर विलक्कु सीजन का पहले पूजे में भाग लिया और हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे।
जी, ये बताएं इमरान, ये भी कहा जा रहा है कि कल कुछ महिलाओं ने मंदिर में जाके पूजा करने की कोशिश की, क्या ऐसा कुछ घटना हुई है?
जी हाँ, हुई है। पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, तो भक्तों से कई जगह उनसे पहचान पत्र की जांच की जा रही थी पुलिस कर्मियों के तरफ से। और इसी तरह पुलिस को पता चला कि आंध्र प्रदेश से एक बस में कई महिलाएं आई थी जो 50 साल की उम्र से कम उम्र की थी, तो उनके जब पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए और उनकी उम्र देखी, पता चला कि वो 50 साल से कम उम्र की हैं, तो करीब 9 या 10 महिलाओं को वहां से वापस भेज दिया गया। मतलब इस साल का कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी आपको याद दिला दें कि किसी तरह आंध्र प्रदेश के खासकर ग्रामीण प्रदेश से स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए बहुत सारी महिलाएं आई थी। इस खुशी में के पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि हर उम्र की महिलाओं को वहां जाने की इजाजत है, वो उस खुशी में महिलाएं आई थी। उस समय भी इस तरह के महिलाओं को वापस भेज दिया गया था।
सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले, अधिक जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। राज्य में एनडीए गठबंधन टूट गया है। भाजपा ने कल इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी होने के बावजूद उनमें मौजूदा सरकार के वरिष्ठ मंत्री सरयू राय का नाम न होने को लेकर भी राजनीतिक उबाल चरम पर है। उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
अब जमशेदपुर पश्चिम से पार्टी का टिकट लेने में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप जिसको योग्य समझते हैं उसको आप टिकट दे दीजिए, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। और इसके बाद मैंने पहले जो कहा है पार्टी के नेताओं से, उसी परिधि में, उसी बातचीत की सीमा मर्यादा के अंदर मैं अपने आगे का भी रास्ता तय करूंगा। मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं कि एक बार ऐसे सभी लोगों से जो साथी के तौर पर इतने दिन रहे हैं उनसे मैं विमर्श कर लूं, विचार कर लूं, और विचार करने के बाद जो रास्ता निकलेगा रास्ते पर चला जाए।
यह आवाज झारखंड की रघुवरदास सरकार में कैबिनेट मंत्री सरयू राय की थी। वे बता रहे थे कि कई सालों तक काम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देने को लेकर असमंजस में पड़ी है। वे जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। पार्टी ने कल अपने उम्मीदवारों की 4th सूची जारी की। इसमें अपना नाम नहीं देखने के बाद सरयू राय जमशेदपुर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि वे रविवार को अपनी आगामी योजनाओं का खुलासा करेंगे। चर्चा है कि वे अपनी पारंपरिक सीट के बजाय जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी उम्मीदवार व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने इसके लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। इधर विपक्ष इस पूरे मामले पर नजर टिकाए हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह घटनाक्रम चिंतित करने वाला है।
सरकार के भ्रष्टाचार पर सरकार के काबीना मंत्री द्वारा, माननीय श्री सरयू राय द्वारा लगातार बातें की जाती, मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का लिखित तौर पे वो बार बार शिकायत करते हैं, एवं किसी और से नहीं, मुख्यमंत्री से ही करते हैं और उनके अधीन जो जांच एजेंसियां है उन पे करते हैं। माननीय सरयू राय जी ने विपक्ष के साथ मिलकर अपनी बात को रखा, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है जो चिंतित करने वाली भी है।
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने इस मसले पर कहा है कि भाजपा अपने अहंकार में डूबी हुई है, ये सारी घटनाएं उसी का प्रमाण है।
जब तक सरकार इनकी चल रही थी, घमंड और सरकार की ताकत के भरोसे रघुवर दास जी की सरकार चल रही थी। अब जैसे चुनाव आया है आपने साफ तौर पे देखा है, वो गठबंधन हो, गठबंधन तो पहले ही टूट गया था। मैं आपसे लगातार कहते रहा कि इनका गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन टूट गया। और जो अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में है वो पूरा झारखंड देख रहा है। इनको सिर्फ सत्ता के लिए सब लोग साथ चल रहे थे और जैसे ही उनको लगा कि अब जनता इनको छोड़ेगी नहीं, तो अंतर कलह बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी में उभर के आई।
राज्य में भाजपा और आजसू पार्टी के गठबंधन टूटने का भी औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। झारखंड भाजपा के प्रमुख लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है कि आजसू पार्टी से इस चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा।
केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री ओम प्रकाश माथुर जी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विधानसभा के चुनाव में 2019 विधानसभा चुनाव झारखंड में गठबंधन आजसू के साथ नहीं रहेगा।
इस बीच सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अधिकतर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन यह सस्पेंस बना हुआ है कि विपक्षी महागठबंधन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कहां से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा ने इन नेताओं की पसंदीदा सीटों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। झारखंड में भी सर्दियों के शुरुआती दिन हैं, लेकिन रातें ज्यादा सर्द होने लगी हैं। इसके बावजूद सियासी गलियारे में गर्मी का माहौल है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी यह गर्माहट और बढ़ती जाएगी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
झारखंड के बाद अब रुख महाराष्ट्र का, जहां भले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो लेकिन सरकार बनाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात होने वाली थी जो टल गई। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कल महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ इस पर हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी ने BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से बात की।
कल शिवसेना, NCP और कांग्रेस के जो नेता है जिनमें अलायंस की बातें चल रही है और उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, तो वो कल राज्यपाल से मिलने जाने वाले थे। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि महाराष्ट्र में किसानों को जो मदद मिलना जरूरी है बारिश की वजह से, तो उसके लिए वो जाएंगे। लेकिन बात ये भी चल रही थी कि राजनीतिक तौर पर भी शायद वो राज्यपाल को बताएं कि उनकी अलायंस की बातें कहां तक आई हैं, और अगर ये नजदीक है तो शायद वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि वो मीटिंग नहीं हो पाई इसलिए कल ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आज का दिन भी अहम है और आने वाले दो दिन भी अहम है। आज 17 नवंबर है, बाला साहब ठाकरे का स्मृति दिन है, और शायद सारे शिवसेना के जो विधायक हैं और नेता हैं उद्धव ठाकरे हैं, वो जो बाला साहब ठाकरे का मुंबई के दादर इलाके में स्मृति स्थल है, जो एक मेमोरियल है, वहां पे वो मिलने वाले हैं और वहां पे शायद कुछ अहम बात हो सकती है इस अलायंस के बारे में। दूसरा बात ये कि कल से दिल्ली में संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, पवार समेत सारे नेता दिल्ली में होंगे और सोनिया गांधी और उनके बीच शायद सोमवार या फिर मंगलवार को अहम बैठक हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का फाइनल गो अभी आना जरूरी है। और उसी बीच आज एनसीपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी है पुणे में, जहां शरद पवार अपने सारे नेताओं से बात करेंगे।
सामना में शिवसेना ने लिखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया है बीजेपी की तरफ से, तो ये मामला क्या है?
शिवसेना जब से बीजेपी और शिवसेना के बीच हाथापाई चल रही थी और दोनों की सरकार नहीं बन पा रही थी 24 तारीख को रुझान आने के बाद, तब से शिवसेना इस तरह के आरोप करती आ रही है, और इसी वजह से शिवसेना ने करीब हफ्ते भर उनके सारे जो MLAs हैं 57 MLAs उन्हें एक रिसोर्ट में रखा था, और उनका ये कहना था कि शायद बीजेपी उनके MLAs पूछ करना चाहती है, तो इस तरह के आरोप वो पहले भी लगा चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, तो अभी फिर से सामना में ये बातें आ रही हैं। इस बीच सबकी निगाहें बीजेपी की तरफ भी है, क्योंकि बीजेपी कल देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि महाराष्ट्र में अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी और बीजेपी की ही बनेगी।
महाराष्ट्र में NCP, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सरकार बनने की संभावना बढ़ती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से तीनों दलों के साथ आने में वक्त लग रहा है, उससे सवाल उठते हैं कि ये सरकार अगर बनी तो इसके सामने क्या चुनौतियां होंगी। इस बारे में मयूरेश कोन्नूर बताते हैं।
सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि विचारधारा का, कांग्रेस और NCP साथ में है, NCP कांग्रेस से ही बाहर होकर तैयार हुई पार्टी है, इसलिए उनकी मूल विचारधारा लेकिन कांग्रेस की है, लेकिन शिवसेना की विचारधारा पूरी तरह अलग है, और मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में हमेशा कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने इतने सालों से रही है, तो हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में क्या होगा, मुस्लिम आरक्षण की बात जो होती रहती है जिसमें शिवसेना उसके लिए हमेशा क्रिटिकल रही है, तो उसके बारे में क्या होगा, और फिर शिवसेना मराठी मानुष का जो यानी प्रांतवाद की भी उनकी भूमिका है, तो उसके बारे में क्या हो, क्योंकि महाराष्ट्र में साउथ इंडियन हो या फिर उत्तर भारतीय हो, खासकर मुंबई में, तो हमेशा शिवसेना उनके अधिकारों के लिए इन दूसरे बाहर प्रांतों से आने वाले नागरिकों के खिलाफ खड़ी रही है, तो इसका क्या होगा। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव भी अलायंस है, क्योंकि देखिए कि महाराष्ट्र में कई ऐसी स्थानीय महापालिका है या फिर कॉरपोरेशन हैं या फिर जिला परिषद हैं, जहां पे शिवसेना NCP और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो लोकल लेवल पे भी पॉलिटिक्स जो है वो बदला जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन फिर कैसे रन होगा, तो दोनों तरफ ये चैलेंजेस हैं।
महाराष्ट्र में तीन अलग अलग दलों के सरकार चलाने को लेकर लोगों में संशय भी है। अलग अलग विचारधारा वाले गठबंधन कितने दिन सरकार चला पाएंगे, इस पर राजनीतिक विश्लेषक समर खड़स क्या कहते हैं, जरा उन्हें सुनिए।
कई अलायंस भारत में हुए हैं और वो बहुत अच्छी तरह से चले भी हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का अलायंस जो है वो चल रहा है, या फिर इसके पहले डॉक्टर लोहिया जी ने जो बड़ी आघाड़ी की थी और भारतीय जनसंघ के साथ में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का अलायंस हुआ था और उन्होंने कई राज्यों में साथ में चुनाव लड़े थे, तो वो अलायंस भी काफी अच्छे से चला। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कई सेक्युलर पार्टियों के साथ अलायंस बनाया था और उसी से NDA का जन्म हुआ था। तो अलायंसेस जो होते हैं वो सरकार चलाने के लिए होते हैं, और सरकार जो चलती है वो संविधान के तहत चलती है, तो संविधान के दायरे में जो जो कर सकते हैं उन चीजों को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो उस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन लोगों ने उसका जो है ढांचा बना दिया है और वो अपने अपने आला कमान को भेजा है और मोर और लेस उसको उनके सारे नेताओं ने मान लिया है।
ये थे राजनीतिक विश्लेषक समर खड़स। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आज रिटायर हो रहे हैं। अब उनकी जगह कल न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 17 महीने का होगा। नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर BBC संवाददाता कमलेश मठेनी ने बात की द ट्रिब्यून अखबार के लीगल एडिटर सत्य प्रकाश से।
महाराष्ट्र में नागपुर से हैं ये, और एक लॉयर फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी भी महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रहे हुए, इनके भाई भी वहाँ सीनियर एडवोकेट थे। तो ये कम्स फ्रॉम ए लॉयर्स फैमिली और वहीं से ये जज बने हैं, महाराष्ट्र में ही जज बने हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में। और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में काफी लंबे समय तक रहने के बाद वहाँ 2000 में जज बने थे और उसके बाद मध्य प्रदेश में ये चीफ जस्टिस बने और फिर वहां से 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और देखिए फैसले तो उन्होंने बहुत दिए हैं इस दरमियान, लेकिन इनको भी जस्टिस रंजन गोगोई की तरह एक तरह से कहें कि अयोध्या फैसले के लिए इनको जाना जाएगा नहीं था। और वैसे इन्होंने बहुत सारे फैसले हैं, अब जैसे फायर क्रैकर्स वाला जो फैसला बहुत पहले 2016 में आया था कि उसकी बिक्री पे एक तरह से रोक लगाई जाए, और उससे भी पहले कहें कि ये आधार वाला एक फैसला था जिसमें ये हो रहा था कि जिनके पास आधार नहीं है तो उनको सरकारी सुविधाओं का बहुत सारा लाभ नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा था कि आधार नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जो एक मामला आया था यौन उत्पीड़न का, उसके लिए जो कमेटी बनी थी, 3 जजेस की कमेटी थी, ये उसके अध्यक्ष थे, बाकी 2 जजेस थे वो महिला जजेस थी।
इनके सामने कौन कौन से ऐसे आगे कोई ऐसा मामला है जिस पर सबकी निगाहें हो सकती हैं?
जहाँ तक आगे आने वाले मुद्दों की बात है जो इनके सामने होंगे, उसमें एक तो आपको अभी जो 2 दिन पहले जो फैसला आया है सबरीमाला के मुद्दे पे, जिसमें कि 3 जजेस ने अलग राय दी है और 2 जजेस हैं जो पुराने फैसले पे कायम रहे, तो 3-2 से जो फैसला आया है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं अलग अलग धर्मों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा ये 7 जज की खंडपीठ के पास जाएगा। तो इनके पास जो एक तरह से कहें कि पहला काम शायद ये होगा कि वो 7 जजेस की खंडपीठ इनको बनानी होगी, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की है।
इन्होंने कभी किसी खास मसले या उस पर अपनी कोई राय जाहिर की हो?
जी याद है, मैंने इनसे बात की थी इनके जब इनको चीफ जस्टिस के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई थी, तो उस वक्त हमने इनसे पूछा था कि आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या लिटिगेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हैव फेथ इन द जुडिशियरी, वो चाहते हैं कि लोग हताश नहीं हो, चूंकि बहुत सारे मामले लंबित हैं। इनका अगर ऐसे पूछें तो ये कंजर्वेटिव जज माने जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं कहूँ, बहुत एडवेंचरिज्म में विश्वास नहीं करते, बहुत आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ करने की उम्मीद हम नहीं रखते हैं, बट ये है कि कंजर्वेटिव जज हैं, तो जो टेक्स्ट बुक स्टाइल में काम है, जो चीजें हैं व्यवस्था के तहत वो ये करेंगे।
जस्टिस एस ए बोबड़े कल लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मेरे सामने नवीन नेगी मौजूद हैं। जी नवीन बताएं।
जी शाहिद, आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में सबरीमला मंदिर से जुड़ी खबरें ही सुर्खियों में छाई हुई हैं। सबरीमला की अयप्पा मंदिर के कपाट कल खुल गए, लेकिन महिलाओं को वहां अभी भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लगभग सभी अखबारों में ये खबर है कि प्रवेश करने आई 10 महिलाओं को प्रशासन ने रोक दिया कल। इंडियन एक्सप्रेस में इससे जुड़ी एक तस्वीर है, तस्वीर में मंदिर के कपाट जो हैं वो दिख रहे हैं और उसके पास जो हैं पुरुष ही पुरुष खड़े हैं और वो भीतर झाँक रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जो तनातनी हुई भाजपा और शिवसेना के बीच, उसका असर अब केंद्र की NDA गठबंधन पर भी दिखने लगा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सोमवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में शिवसेना विपक्षी सांसदों के साथ बैठेगी। इसके साथ ही संसद सत्र से पहले जो NDA की बैठक बुलाई गई उसमें भी शिवसेना को आमंत्रित नहीं किया गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बताया कि उन्हें पता चला है कि रविवार को NDA की बैठक बुलाई गई है, लेकिन वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। दिल्ली के प्रदूषण की मार तो लगातार दिल्लीवासी झेल ही रहे हैं। दिल्लीवासियों के लिए एक और बुरी खबर ये आई है लगभग हर एक अखबार में कि राष्ट्रीय राजधानी में नलों में आने वाला जो पीने का पानी है वो भी पीने लायक नहीं है। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली समेत देश भर के 20 राज्यों के लिए से लिए गए जो पानी के नमूने थे उनकी जांच रिपोर्ट को कल जारी किया, और भारतीय मानक ब्यूरो यानी BSI की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले महीने 11 अलग अलग जगहों से ये नमूने लिए गए थे और जांच में ये सभी नमूने जो है लगभग सभी जो मानक होते हैं स्वच्छ पानी के पीने लायक उसमें सब में फेल हो गए। और इसके अलावा देहरादून, पटना, लखनऊ इन सभी जगहों के भी नमूने फेल हुए।
सबसे बेहतर बताया जा रहा है मुंबई का पानी,
मुंबई का पानी सबसे साफ है बताया जा रहा है, वो सभी मानक जो उनमें खरा उतरा है। हालांकि जो ये रिपोर्ट है इसको दिल्ली जल बोर्ड ने जो है उसको इनकार किया, बोला कि हम इसको नहीं मानते हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि गंगा नदी में प्रदूषण फैलाने से जुड़ा प्रदूषण फैलाने पर जो है केंद्र सरकार सजा देने पर उसकी योजना बना रही है, और इसके ऊपर जो है राष्ट्रीय नदी गंगा कानून जो है एक कानून प्रस्तावित कर रही है सरकार। जिसमें 50 करोड़ तक का सबसे ज्यादा जुर्माना लग सकता है।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। हिंदी अखबारों के बाद बात करते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की, जहां इसमें इस हफ्ते विपक्ष के आजादी मार्च के समाप्त होने, भारत प्रशासित कश्मीर में लॉकडाउन के 100 दिन, नवाज शरीफ की बिगड़ती तबीयत आदि जैसी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। आइए सुनते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा नवीन नेगी से, जिसे तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने।
पाकिस्तान की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी और धार्मिक संगठन जमीयत उल इस्लाम एफ यानी JUIF का आजादी मार्च खत्म हो गया है। 27 अक्टूबर से कराची से शुरू होकर राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे आजादी मार्च का आह्वान JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने किया था, लेकिन इस मार्च को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल था। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान अपने पद से इस्तीफा दें और नए सिरे से देश में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। बुधवार 13 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए आजादी मार्च खत्म करने की घोषणा की। अखबार जंग के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद का धरना खत्म करके प्रांतों में प्रमुख चौराहों और हाईवेज को जाम किया जाएगा। मौलाना ने इस्लामाबाद धरने को प्लान ए कहा था, जबकि राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करने को प्लान बी कह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी इमरान खान सरकार से डील हो गई है कि अगले चुनाव में उनका ख्याल रखा जाएगा। भारत में कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और वहां लॉकडाउन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। अखबार नई बात के अनुसार इमरान खान ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के कारण पाकिस्तान खतरे में है और कश्मीर की समस्या हल किए बगैर क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल नहीं हो सकती है। उधर पाकिस्तान ने अमरीकी संसद के मानवाधिकार आयोग टॉम लेंटॉस कमीशन के जरिए भारत प्रशासित कश्मीर के मुद्दे पर की गई सुनवाई का स्वागत किया है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि टॉम लेंटॉस कमीशन ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को दोहराया है कि भारत प्रशासित कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक विवादित मुद्दा है। लेकिन अखबार नई बात में एक संपादकीय छपा है जिसमें इमरान खान सरकार की जमकर आलोचना की गई है। अखबार ने संपादकीय में लिखा है कि 5 अगस्त के भारतीय फैसले के बाद पाकिस्तानी सरकार और उसके विदेश मंत्रालय ने सिवाय भाषणबाजी के और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए देश से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है।
पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की समीक्षा आप सुन रहे थे, जिसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कल तीसरे ही दिन बांग्लादेश को एक पारी और 130 रन से करारी मात दी। कल बांग्लादेश की दूसरी पारी 69.2 ओवर में ही 213 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने 64, मेहंदी हसन ने 38 और लिटन दास ने 35 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का जमकर सामना नहीं कर सका। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 31 रन देकर 4, आर अश्विन ने 42 रन देकर 3 और उमेश यादव ने 51 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारत के लिए पहली पारी में 243 रन की पारी खेलने वाले मयंक अग्रवाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच अब दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 22 तारीख से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो डे नाइट होगा। उधर हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के के श्रीकांत सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। उन्हें मेजबान हांगकांग के ली चियुक यू ने 21-9, 25-23 से हराया।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। ईरान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने चेतावनी दी है कि पुलिस और न्यायपालिका प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। चेक रिपब्लिक की पुलिस ने अनुमान लगाते हुए बताया है कि राजधानी प्राग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आंद्रेज बेबिस और न्याय मंत्री मैरी बेनेसोवा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
श्रीलंका में कल राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। लाखों लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया। कई जगहों पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों से जुड़े 400 पन्नों को प्रकाशित किया है। इन दस्तावेजों में शिनजियांग प्रांत में लाखों वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखने के निर्देशों का खुलासा हुआ है। बोलीविया में जारी राजनीतिक संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने बोलीविया के हालात पर चिंता जाहिर की है। वेनेजुएला में एक बार फिर हजारों लोग निकोलस मादुरो सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। विपक्षी नेता युआन गाइडो के आह्वान के बाद लोगों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम में स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अब अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।